بھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے مجھے اور آپ کو مالا مال فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آپ پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں، علم دین کا یہ ایک سیشن ہے، علم دین کا پروگرام ہے، سوال جواب کی صورت میں بہت سا علم انشاءاللہ اس مختصر سے ٹائم میں ہمیں سمیٹنے کو ملے گا، علم بھی حاصل ہوگا اور آپ کے شرعی سوالات، بعض اوقات ذہنوں میں کئی طرح کے ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ جو کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں، یا روز مرہ کی زندگی میں کئی ایسے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں جس کے بارے میں آپ شرعی آگاہی اور جاننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ اس پروگرام میں ایسے ہی سوالات ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد کفیر رضا عطاری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاک اللہ۔
کیسے مزاج کے؟
الحمدللہ علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟
اللہ کا شکر الحمدللہ۔ عید سے پہلے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے ظاہر ہے قربانیوں کا ایک سیزن ہوتا ہے، تو سارے سوالات قربانی ہی پہ ہوتے ہیں۔ پروگرام لائیو کریں، کسی طرح بھی آپ بیٹھیں اور کسی مسجد میں بھی جائیں، تو عام طور پہ قربانی کے سوالات وہ پیش نظر ہوتے ہیں اور لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جس عبادت کو آدمی بالفعل کر رہا ہوتا ہے اور جس کا موقع آ جاتا ہے، اس وقت یہ چیزیں تو ذہن میں ہوتی ہیں اور سوال کرنے بھی چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ روزے جب ہم رکھتے ہیں تو روزے کے مسائل یاد آتے ہیں، عمر حج کے لیے جائیں تو عمر حج کے مسائل یاد آتے ہیں۔ اس کا مطلب جو ہم عبادت کریں گے، جس میں ہم باقاعدہ دلچسپی لے رہے ہیں، تو اس کے مسائل ہمیں وہ ذہن میں آتے ہیں۔ کفیل صاحب، کیا ایسی آدمی کی ذہن بن جائے کہ ساری زندگی اس طرح کے معاملات میں، ظاہر ہے قربانی ایک وقت کے لیے، حج ایک وقت کے لیے، عمرہ ایک وقت کے لیے، جب بھی آدمی جاتا ہے، لیکن ایز اے مسلم روزمرہ بھی تو اس کو کئی طرح کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ذہن اس طرف جا ہی نہیں، کیا کرنا چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بعض تو عبادات وہ ہیں جو کہ اوکیجنلی ہوتی ہیں، کہ ایک مخصوص وقت کے اوپر ادا ہوتی ہیں، جیسے ہم نے رمضان کی بات کی یا قربانی کی بات کی۔ اچھا، پھر اس کے اندر بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ہوتی ہے، جن لوگوں کی، وہ تو ان معاملات کے اوپر پوچھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جن کی توجہ ان چیزوں پر نہیں ہوتی، تو وہ ان معاملات کو بھی نارمل سنی سنائی باتوں کے اوپر ہی لے کر جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے وہ کام جو زندگی کے اندر ہم روزمرہ کی بنیادوں پر کر رہے ہوتے ہیں، یا ڈیلی ہمارا جو ہے وہ کام ہے، تو اس میں توجہ نہیں ہوتی، یا وہ نارمل ہونے کی وجہ سے اس کی طرف توجہ ہم کرتے نہیں ہیں،
اس کو نارمل ہی لیتے ہیں،
اس کو نارمل لے رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں در حقیقت مسائل درپیش نہیں ہوتے، ایسا نہیں ہے، مسائل تو درپیش ہوتے ہی ہیں
ہر معاملے میں،
مگر توجہ نہیں ہوتی، یا یہی نہیں پتا ہوتا کہ یہ مسئلہ کچھ ہوا بھی ہے، اس کو پوچھنا بھی چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے۔ تو جب انسان کو کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہوتا، تو اب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو وہ چلتے رہتے ہیں، یا وہ جو ہے وہ جو محتاط ہوگا وہ بہرحال جو ہے وہ راستے میں جگہ جگہ رک کر پوچھے گا کہ میں نے جس منزل پر جانا ہے میں صحیح راستے پر ہی جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا۔ تو یہی معاملہ ہماری زندگی کے ساتھ بھی ہے۔ اب جیسے ایک نارمل روٹین کی، ڈیلی کی ایک چیز مسلمان کی زندگی میں جو فرض ہے وہ نماز ہے، تو پانچ وقت نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ جناب کوئی شخص سالوں سے نماز پڑھ رہا اور اس کو کبھی کوئی غلطی درپیش نہ آئی ہو نماز کے اندر، تو کہ کس صورت میں سجدہ صاحب لازم ہوگا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اسے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ سجدہ صاحب بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو لازم ہوتی ہے،
صحیح بات،
یا اسے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ نہیں جناب نماز جو ہے وہ ٹوٹتی بھی ہے، یا نماز جو ہے وہ مکروہ بھی ہوتی ہے، تو جب اسے یہ باتیں پتہ ہی نہیں ہوں گی بیسک، تو کبھی بھی اس کے ذہن میں سوال بھی نہیں اٹھے گا ان چیزوں کا، اور وہ بس یہی سمجھے گا کہ بس میں نے جب تکبیر تحریمہ کہہ لی تو بس اب پوری نماز میں پڑھ رہا ہوں، جیسے بھی تو نماز ہو جائے گی، اللہ قبول کرنے والا ہے، کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو وہ معاف کرنے والا ہے، جو ایک عمومی طور پر
یہ عموماً تصور اسی طرح عوام کا،
وہ یہ نہیں سوچتا کہ بھائی اس کی اس عبادت کو معاف کرنے والا، اس کی غلطی کوتاہیوں کو معاف کرنے والا تو اللہ پاک کی ذات ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس عبادت کے طریقے، تقاضے، احکام بھی بیان کیے ہیں جن کو بہرحال پورا کرنا ضروری ہے.
ٹھیک،
جب آپ اس طریقے اور تقاضوں کے مطابق اس عبادت کو ادا کریں گے تو آپ نے اپنی طرف سے جو کرنے کا کام تھا وہ کر لیا.
زبردست.
اب وہ کما حقہ ہوا یا نہیں ہوا، یا وہ قبولیت کے لائق ہوا یا نہیں ہوا، یہ اللہ پاک کی مشیت کے اوپر ہے کہ وہ جس کا چاہے قبول فرمائے جس کی عبادت، اور جس کی چاہے عبادت قبول نہ فرمائے. تو در حقیقت معافی کے حوالے سے جو ہمیں امید رکھنی چاہیے یا قبولیت کی جو امید رکھنی چاہیے، وہ اس عبادت کو اپنی استطاعت کے مطابق، شریعت کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ادا کرنے کے بعد وہ امید رکھنی چاہیے، جو عموماً لوگ پہلے رکھ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ سیکھتے بھی نہیں ہیں. یعنی کئی لوگ اس کا یہ عذر بھی دیتے ہیں، یار پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات پتہ چل جائے جس کا کرنا لازم ہو جائے ہم پر، یا پچھلی نمازوں کا ہمارا مسئلہ ہو جائے تو وہ دہرائے گا کون. تو اس بنیاد پر وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بھائی جب تک پوچھے نہیں ہے اس وقت تک ہم عافیت کے اندر ہیں.
بلکہ معاذ اللہ بات تو یہ سوچ شاید بنائے ہوتے ہیں، پوچھیں گے پھنس جائیں گے.
ہاں،
ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہوئے ایک طبقہ ایسا ہے کہ پوری مرض کی علامات بھی واضح ہیں، کیونکہ آپ کوئی مشورہ دے دیتا ہے کہ آپ کوئی لیب میں جائیں، ڈاکٹر سے ٹیسٹ لکھوائیں، آپ چیک اپ کروائیں، آپ کو شاید یہ شوگر کا عارضہ ہے، یا شاید آپ فلاں مرض کی طرف آپ جا رہے ہیں، کیونکہ یہی علامات اس کی عام طور پہ بتائی جاتی ہیں، لیکن وہ نہیں جاتے. یا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ کچھ بتا دیں گے. اب بتا دیں گے تو دو ڈر ہوتے ہیں، دوائی لکھ کر دے دیں گے اور کچھ کھانے پینے میں بند کر دیں گے.
جی،
تو کھانے پینے میں بندش لگے گی، اور یہ اس ڈر کی وجہ سے وہ وہاں نہیں جاتے، یہ سراسر اپنا ہی نقصان کر،
اپنے ہی نقصان کر
اپنے. تو دین میں بھی یہی،
دین میں اس سے زیادہ ہے کہ یہاں جو دنیا کا نقصان ہے یہ تو دنیا کے اندر ہی ہے. اب آپ کو اگر دنیا میں یہ پتہ چل گیا کہ بھائی آپ کی پچھلی 5 سال کی نمازیں نہیں ہوئیں،
صحیح،
کے پاس پڑھنے کا موقع تو ہے، توبہ کا موقع بھی ہے، لیکن اگر یہی بات جب آپ کو نامہ اعمال کل قیامت کے دن دیا جائے گا، اور اس دن آپ تو اس گمان میں کہ میں نے تو پوری زندگی کبھی نماز جو ہے وہ چھوڑی نہیں ہے، اور وہاں جب نامہ اعمال کھلتا ہے تو پتہ چلے کوئی نماز ہی نہ ہو وہاں پر،
او ہو،
اور بعد میں یہ پتہ لگے کہ جناب جو نماز کا اہم فرض تھا آپ تو اس چیز کو فالو ہی نہیں کر رہے تھے،
صحیح،
تو لہٰذا نمازیں آپ کی ہوئی نہیں. تو اب وہاں پر کیا کریں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب تو آپ نہ توبہ وہاں پر جو ہے وہ ہوگی، نہ جو ہے وہ آپ ان عبادات کی ادائیگی کر سکیں گے کسی طریقے سے. تو یہ دنیا کے معاملات کے اعتبار سے، صحت کے معاملات کے اعتبار سے جو آپ نے ذکر کیا، آخرت کا معاملہ زیادہ خطرناک ہے،
زیادہ خطرناک ہے.
تو لہٰذا کبھی بھی یہ سوچ کر آپ مفتی کے پاس نہ جائیں، یا کسی عالم دین سے مسئلہ نہ پوچھیں کہ نہیں یار مسئلہ پوچھ کر پھنس جائیں گے ہم، یہ سراسر جو ہے وہ بیوقوفی ہے، اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ وہ آپ کو اس غلط کام پر لگائے رکھنا چاہتا ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ جو روزمرہ کے بھی امور ہیں، نماز ہے، اسی طرح جو ہمارے حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، کاروبار کر رہے ہیں یا نوکری کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، اس کے جو بھی شرعی احکام اور مسائل ہیں ان کو جو ہے وہ جانیں. اسی طریقے سے جو انسان کے اپنے روزمرہ امور میں جو گناہوں میں مبتلا ہونا ہے، غیبت کے اندر، جھوٹ کے اندر، بہتان کے اندر، ان سب چیزوں کو جب تک جانیں گے نہیں کہ بھائی غیبت کہتے کسے ہیں، تو کئی دفعہ وہی ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں سچ بات تو بول رہا ہوں بھائی. تو بھائی سچ بول رہے ہیں جبھی تو غیبت ہے، آپ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی، آپ سچی برائی بیان کر رہے ہیں جبھی تو غیبت ہے، اگر آپ جھوٹی برائی بیان کریں گے تو وہ تو بہتان ہو جائے گا.
صحیح بات.
تو یہ بہت سارے امور ایسے ہیں کہ در حقیقت ان چیزوں کی طرف توجہ لوگوں کی جو ہے وہ
نہیں ہوتی.
تو لہٰذا توجہ کے لیے سب سے پہلے یہی ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہوگا. اس کے مختلف ذرائع ہیں کہ آپ جب ایک کتاب پڑھتے ہیں، کسی بھی ٹاپک کے اوپر آپ ایک کتاب پڑھیں، نماز کے اوپر آپ نے نماز کی کتاب پڑھی، تو اب سوالات آپ کے ذہن میں اٹھنا شروع ہوں گے کہ یار اس میں تو یہ بات لکھی ہوئی، ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایسا ہو گیا تھا میرے ساتھ، تو اب میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو اب آپ کے سوال اٹھا، اب آپ پوچھنے آئیں گے مفتی صاحب کی طرف، اس سوال کا جواب ملے گا تو آپ کو جو ہے فائدہ ہوگا. اچھا، مدنی چینل کے سلسلے کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم سے تو یہاں 30-40 منٹ کے اندر تو جو ہے وہ مشکل سے 20 سوالات شاید ہوتے ہوں گے،
बहुत अच्छी एवरेज है
हाँ।
कि अगर आदमी सोचे 40 मिनट के भी एक गिलास के अंदर
जी
20 शरी मसाइल मुख्तलिफ जेतों से
जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब हमसे जो उमूमी तौर पे जो दारुल इफ्ता में लोग सवाल करते हैं वो इससे कहीं ज्यादा है,
कहीं ज्यादा।
यहाँ पर सिलसिला लाइव करने का मकसद ही यही होता है कि भाई इन 20 सवालों के जरिए से कितने लोगों के जहनों में मजीद सवाल
पैदा हुए हैं
कि वो ये सोचते हैं अच्छा इस बात का तो ये जवाब दिया, इससे मिलता जुलता मसला तो मेरा भी है, मेरे से भी ये गलती हुई है या मैंने भी ये काम किया है। तो लिहाजा दर हकीकत ये सिलसिला जहाँ आपको इल्मे दीन फराहम करता है वहीं आप में अवेयरनेस पैदा करता है।
बिल्कुल बिल्कुल
कि जनाब वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें पूछना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तो लिहाजा इन सिलसिलों के ज़रिए से हमें ये इल्मे दीन हासिल भी होता है और साथ ही साथ हमें बहुत सारे और सवालात हमारे जहनों में पैदा होते हैं। और जब वो आपके जहनों में पैदा हो नाज़रीन, तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि उसके लिए हिचकिचाहट ना करें। हो सकता है कि आप जो है वो चैनल के ऊपर कॉल करते हुए जो है वो हिचकिचा रहे हों, तो आपने अगर मसला पूछना है तो आप चैनल पे भी पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नहीं आना चाहते, आप अपनी आवाज़ तक शेयर नहीं करना चाहते, तो आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के फ़ोन नंबर्स के ऊपर जो है वो आप फ़ोन करके जो है वो मसला पूछ सकते हैं। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में बिल मुशाफा आप आकर भी जो है वो मुलाकात कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में जब आकर अपना मसला डिस्कस करते हैं तो कोई उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। कई लोग ऐसा होता है बस अगर आकर पूछते हैं कि भाई आप रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे,
कुछ ये
तो
भी समझ होते हैं जैसे हम दारुलता में बैठ के डायरेक्ट लाइव
डायरेक्ट लाइव है। तो
दारुलता में बैठ के मैं फोन भी सुन रहा हूँ, जो दारुलता की हमारी फोन सर्विस है। नाज़रीन इकराम ये आप नंबर स्क्रीन पर भी मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, तो ये भी मुख्तलिफ दारुलता के जो ब्रांच हैं उनके अंदर ये फ़ोन बाकायदा सुना जाता है। और ये एक खसूसियत है इस सर्विस की कि इस पर जवाब देने वाला कभी कराची से, कभी लाहौर से, कभी फैसलाबाद, कभी सरगोधा, क्या ख्याल है
जी,
मुख्तलिफ औकात हैं और उन औकात के मुताबिक इस इन नंबर्स पर वो जवाब दिए जाते हैं। अच्छा उस पर भी लोग पूछते हैं बाज़ औक़ात, आप लाइव तो नहीं जा रहे हैं
जी,
आप ये लाइव हमारी कॉल तो नहीं चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं हिचकिचाहट, जैसा मुझसे ने कहा कि कोई हिचकिचाहट वाली बात भी नहीं है। आपका सवाल हमारे लिए अमानत है, आपकी रहनुमाई जो ली वो भी अमानत है। ज़ाहिर है आप किसी से मशवरा भी लेते हैं तो मशवरा देने वाला भी अमीन होता है, अमानतदार होता है, दूसरों की इज्जतों का तहफ़ माल का तहफ़ दीगर कई चीज़ें ऐसी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में बहुत सी ऐसी अवेयरनेस इन चीज़ों से, प्रोग्राम से, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकात मुनालिया के मदनी मुज़ाकरों से हुई है। तो ये तमहीदात जो हमने बांधी है तो ये इसलिए तमहीद के तौर पे गुफ्तगू की, कहीं ऐसा ना हो कि लोग समझे कुर्बानी गई तो अब उसके बाद बकिया जो है वो अब बस अब तो कोई मसला ही नहीं हमारे लिए, कोई शरी मसाइल ही नहीं है, बस मुल्की मसाइल हैं या मुआशी मसाइल हैं या कुछ कानूनी मसाइल हैं, पचीदगियाँ हैं, बकिया कोई मसाइल नहीं, मसाइल और भी हैं, शरी दीनी मसाइल भी हैं, इसके भी हमें ज़रूर अवेयरनेस लेनी चाहिए। और जो इस पर अमल करते हैं अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे और इल्मे दीन सीखने वाला ही हमें हमेशा बनाए और इल्मे नाफे भी अता फरमाए। बढ़ते हैं नाज़रीन आपके सवालात की तरफ, देखते हैं क्या पूछना चाहते हैं।
मेरा नाम आतिफ है, मेरा सवाल ये है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो लोग गेम्स के अकाउंट बनाकर सेल करते हैं, यूट्यूब पर चैनल भी सेल करते हैं, तो क्या उससे अर्निंग जायज़ है?
अर्निंग के जहाँ मुख्तलिफ ज़राए हैं, आम तौर पे जब किसी की दुकान चल जाती है तो वो भी गुडविल के नाम पर जो है वो उसको, अगरचे वो दुकान किराए पर होती है लेकिन जब वो वहाँ से जो है वो अपना कारोबार ख़त्म करता है, दूसरे को देता है, तो वो गुडविल के नाम के ऊपर जो है वो पैसे लेता है। तो गुडविल के नाम पर पैसे लेना ये जायज़ जो है वो नहीं है। हाँ वो दुकान का फर्नीचर वगैरह उसे बेच दे तो वो एक जुदा जो है वो सूरत है। पर जो आपने सवाल किया हमारे साहिल ने, ये है कि गेम का अकाउंट बना लेना, उसके ऊपर आपकी एक व्यूअरशिप हो गई या जो है वो उसके ऊपर आपके क्वींस ज़्यादा हो गए,
स्कोर जो भी
या वो
नंबर हैं
ज़्यादा हो गए, अब ये बेचना, तो ये दर हकीकत उमूमी तौर पर देखें गेम तो वाज़े तौर पर नाजायज़ है
ठीक।
तो एक नाजायज़ काम वो खुद कर रहा था तो अब उसी का प्लेटफॉर्म आगे जो वो बेच रहा है तो ये गुनाह की चीज़ ही जो है वो बेच रहा है, गुनाह का प्लेटफॉर्म जो है वो सामने वाले को बेच रहा है, तो हरगिज़ जायज़ नहीं है। क्योंकि बहरहाल गेम जो है वो मौसीकी से खाली नहीं होते, तो म्यूज़िक भी उसके अंदर होता है, कई गेम वो हैं जिसके अंदर जो है वो बेपर्दा जो है वो तस्वीरें भी जो है वो होती हैं, बहरहाल उसको खेलना जायज़ नहीं है। ये दोनों चीज़ें ना भी हों तो भी बहरहाल गेम जो है वीडियो गेम जिस तरीके से हमारे यहाँ राइज हैं उनका खेलना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है कि शरीयत मुतहर अल्लाह व लाइव से मना फरमाती।
और भी कई उसमें बेपर्दगी
बेपर्दगी और म्यूज़िक और कई चीज़ें जो है वो उसमें नाजायज होती है।
जी मजीद सवाल
मुफ्ती साहब से, मेरा सवाल ये है कि अगर बच्चा दूध निकाले या यूनट करदे चीज से दूसरे का बदन नापाक हो जाए तो क्या बदन पर तीन बार कपड़ा गीला करके पहनने से बदन पाक हो जाएगा या दोनों यानी पानी बहाना जरूरी होगा। और दूसरा सवाल ये है कि अगर चारपाई नापाक हो जाए तो इसे पाक करने का तरीका क्या होगा, एक ही बार धोने से पाक हो जाएगी या तीन बार धोने धोना पड़ेगा, बराए करम रहनुमाई फरमा दे, जज़ाकअल्लाह खैरा।
अमीन, आपने अपनी उम्र नहीं बताई, इतना लंबा सवाल कैसे याद किया आपने भाई, ये बज़ाहिर तो ऊपर छोटी सी लग रही बच्चे की, लेकिन खैर चलें, इन्होंने दो तीन चीज़ें जो पूछी हैं, बच्चा पेशाब करे किसी के बदन पर लगे तो उसको साफ करना, और
बच्चा अगर से छोटा बच्चा हो शीरखार बच्चा भी हो तो उसका पेशाब जो है वो नापाक ही है, लिहाजा बदन या कपड़ों के ऊपर लगेगा तो इसको नापाक भी कर देगा और उसे पाक करना होगा। सिर्फ पोछ लेने से, गीला कपड़ा फेर लेने से, पोछ लेने से जो है वो जगह पाक नहीं हो जाएगी, बल्कि उसे धोना ही होगा, अच्छी तरीके से धोकर पाक करना होगा।
धोकर पाक करना। अच्छा, दूध निकालने का भी ये कह रहे हैं कि दूध,
जी दूध निकालने में भी अगर बच्चे ने दूध एक है कि अभी उसके मुंह में ही था या हलक में पहुंचा था और जो है वो थसका लगा या खांसी आ गई और अब दूध फेंका,
क्या बोलते हैं उसको जो अचानक वो बच्चों को लग जाता है और माएं पीछे से मरती भी हैं ऐसे?
हाँ, थसका लगना भी जो है वो कहा जाता है,
या पंजाबी में उसको मेरा ख्याल थ्रू कहते हैं या कुछ ऐसा आ गया।
अच्छा,
और चले
तो अगर उस वजह से जो है वो निकला तो वो दूध तो पाक है, लेकिन एक है कि बच्चे ने दूध पी लिया और वो अब उसके मैदे में चला गया और अब वो दूध निकला, तो बहरहाल वो दूध अगर मुंह भर कह है, मुंह भर उल्टी है तो वो नापाक है, अगर मुंह भर से कम है तो वो पाक है।
मुंह भर से कम है तो वो
पाक है,
अगरचे मैदे से आया,
अगरचे मैदे से आएगी जब ही ये हुक्म होगा ना, मैदे से आएगी तो जो है वो मुंह भर कह होगी तो नापाक होगी, वरना पाक होगी।
सही है, और ये बच्चे का भी हुक्म है, बड़ों का भी?
बड़ों का भी यही हुक्म है,
यानी आम तौर पे भी इसको, और जिसके ऊपर वुजू टूटने के अहकामात या रोजे टूटने के भी अहकामात बाद सूरतों में, हर सूरत में वो भी नहीं है, लोगों में बहुत सी ऐसी चीजें मशहूर भी हो जाती कि बस किसी को उल्टी हुई और बस उसके बाद फौरन कहेंगे कि आपका रोजा टूट गया। कई लोग नफली रोजे भी रखते हैं, ये तरह अभी ज़ुलहज्जा शरीफ का महीना, मुहर्रम शरीफ का महीना है, माशाल्लाह इस तरह की लोगों का एक रुझान है कि रोजे रखते हैं। पिछले दिनों दालता में कोई एक मसला आया, तो जैसे फरीकैन हैं सबको बुलाते हैं तो बातचीत करते हैं, तो अब उसमें जो डिस्कस किया जा रहा था तो वो आदमी मतलब ये कह रहे हैं कि मैं रोजे से हूँ भाई, आप मेरा यानी उस इजहार किया किसी बात पर कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ जैसे, तो अब ज़ुलहज्जा का महीना जैसे शुरू की तारीखें और ये वो बात मामला हुआ और मामला भी सच वही निकला कि जो ये कह रहे थे, दूसरा ऐसा नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा तो वो ये कह रहे थे कि जब से हमने मदनी चैनल पर क़िबला मीर अहले सुन्नत से ये सुना है इन 10 पहले 9 दिनों की बड़ी फजीलत है
जी,
तो वो भी रखते हैं और ये दरमियानी 3 दिन जो हैं उसके भी रखते हैं, जुमरात की भी कोशिश होती है और मुहर्रम शरीफ के भी तकरीबन 10 मुहर्रम तक तो ये चलते ही चलते हैं, यानी यकम से 10 मुहर्रम तक ये सिलसिला में। खुद कफील भाई एक बंदा बाहर काम करने वाला
जी
और रोज़मर्रा की, तो वो कह रहे हैं लग शुक्र है घर में ऐसा एक माहौल बना हुआ है और इस रोज़े की वजह से हमारे घर वालों का कहना है कि कई तरह के हमें मामला छूट भी जाते हैं और इबादत वाले कई काम हो जाते हैं रोज़े की वजह से, खाने पीने में भी नहीं है
जी,
टिफ़िन कहते हैं मुझे भी नहीं भेजना होता उनको ना, इधर कोई और है घर में, छोटे बच्चे भी नहीं है, कोई इस तरह की कोई और एक्टिविटी हो, बेटियां हैं वो भी रख लेती हैं, घर वाले हैं वो भी रख लेते हैं, मैं भी रख लेता हूँ, सुभान अल्लाह। ऐसे कई घराने हैं नाज़रीन इकराम, तो ये भी बड़ा शौक होना चाहिए और नफली इबादत का भी शौक इस तरह वो हमें रहना चाहिए। और नफली रोज़ों का जो ताल्लुक हदीसों में बयान किया ना, पीर शरीफ, जुमरात, महीने के दरमियानी वो 3 अयाम बीत के रोज़े, और ये कुछ ऐसे जो इस्लामी बतौर ख़ास फजीलत वाले महीने आते हैं उनमें एहतमाम होने चाहिए। एक सवाल इनका और रह गया, चारपाई नापाक हो जाए तो अब उस चारपाई को क्या करें?
चारपाई नापाक हो गई तो उसके 2 तरीके हैं, एक तो ये कि उसके ऊपर पानी इतना बहाया जाए पाइप वगैरह के ज़रिए से कि जनाब जो है वो गालिब गुमान हो जाए कि जिसमें जो नजासत थी वो ज़ाइल हो गई। अब चूँकि चारपाई के ऊपर में जो वो निवाड़ होती है वो एक दूसरे के ऊपर बसा औकात जो है वो बल्कि निवाड़ जो होती है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो बंधी हुई होती है। तो मुमकिन है कि नजासत जो है वो उन दो चीज़ों के बीच में जो है वो रह गई हो। तो बहरहाल उसको अच्छे तरीके से पानी डाल के अगर धोकर उस पर इतना पानी बहाया कि गालिब गुमान हो गया कि इसमें जो नजासत थी वो ज़ाहिल हो गई, तो इस तरह पाक हो जाएगी। दूसरा ये कि उस पर पानी डालकर उसे खड़ा कर दिया जाए, जब उसमें से पानी टपकना बंद हो जाए फिर दोबारा पानी डाला जाए, फिर टपकना बंद हो जाए फिर तीसरी बार डाला जाए, तो यूँ तीसरी मरतबा जब पानी टपकना बंद हो जाएगा तो वो पाक हो जाए।
ठीक है। अच्छा, जिन जगहों में आमतौर पर चार पहियाँ यूज़ होती हैं इलाकों में ये वो, तो वो बाहर सहन में या कच्चे मकान होते हैं वैसे ही बाहर सहन में रखी चारपाई, ऊपर कोई बाल्टी से पानी डाल दिया, वो ज़मीन पर गया, ज़मीन खुश्क हो जाती है, फिर उसी तरह यानी चारपाई अपनी जगह पर ही रहती है, उसको अच्छी तरह या तो पाइप से धो दिया या अच्छी तरह पानी बहा दिया तो ये चलेगा या टपकना बंद हो जाए?
नहीं, वो तो ये कि अगर तो पानी बहता पानी उसके ऊपर जो है वो डाला कि अच्छे तरीके से जो है पाइप से धो दिया तो इतनी देर पानी बहाया कि अब गालिब गुमान हो गया कि ये नजासत जो है वो जाइल हो गई होगी तो वो पाक हो जाएगा,
एक ही दफा में
पाक हो जाएगा अब उसको खड़ा। हाँ, जब ऐसी सूरत नहीं है पानी इस तरह बहाने वाली जारी पानी तो फिर वो जो है वो खुश्क वाला तरीका पाक करने का इस्तेमाल करना
ठीक है। अच्छा, आगे मजीद इसी के ऊपर सवाल कुछ है कि बेड है, चारपाई है, कुछ और बिस्तर होते हैं ऐसे नापाक हो गए किसी वजह से, धो भी नहीं सकते अब उनको या दुश्वारी बहुत है या चीज़ ही ख़राब हो जाएगी, गद्दे हैं या कुछ और है, अब इन पे कोई मोटी चादरें बेडशीटें डालकर या मोटी चादरें डालकर यानी खुश्क हो चुकी है, कोई निजासत दूसरे को लग नहीं रही, इस पर बैठ कर दुरूद पढ़ रहे हैं, बावजू बैठ रहे हैं, कोई मसला है इसमें?
नहीं, इसमें हर्ज नहीं है। पाक कोई चादर उसके ऊपर अगर बिछा ली गई जबकि वो नीचे खुश्क हो गया है तो अब ऐसी सूरत में आप उसके ऊपर जो है वो बैठकर तिलावत कुरान करीम भी कर सकते हैं, जिक्र अज़कार तस्बीहात भी पढ़ सकते हैं, अगर वहाँ पर सो रहे हैं या लेटे हुए हैं तो आप ये तमाम अपने अज़कार वगैरह जारी रख सकते हैं। जबकि आप पाक चादर बिछा लेते हैं तो फिर जो है वो नापाकी वाली जगह शुमार वो नहीं हो।
जी मजीद सवाल।
मेरा सवाल ये है कि नमाज पढ़ते वक्त लोग आगे से गुजर जाते हैं तो क्या इससे नमाज फूट जाती है?
जी,
नमाज जो है वो नमाजी के आगे से गुजरना नहीं चाहिए बगैर सुतरे के, जबकि किसी जगह में नमाज जो है वो पढ़ रहा हो। हाँ, अगर कोई शख्स किसी मैदान में जो है वो नमाज पढ़ रहा है तो फिर तीन सफ के बाद से उसके सामने से गुजरा जा सकता है।
अलबत्ता मैदान में नमाज पढ़ रहा हूँ,
मैदान में नमाज पढ़ रहा है
यानी सहरा है, कोई
सहरा है बिल्कुल जो है वो खुला जो है वो एरिया है, तो अब ऐसी जगह पर कोई नमाज पढ़ रहा है तो अगर तीन सफ के बाद से कोई शख्स जो है वो गुजर जाता है तो गुजरा जा सकता है
रोड
बगैर सुतरे के भी।
रोड पे जैसे गाड़ी खड़ी की, किसी ने नमाज का टाइम है मुसल्ला निकाला वहीं पे वो नमाज पढ़ने लग जाते हैं, अब वो कोई दूर से किसी को इधर जाना है क्रॉस करना है और वो देखे नमाज पढ़ रहा है तो ये भी इसका
ये भी जो है वो गुजरा जो है वो जा सकता है। किसी जगह में है, किसी मकान में, अगरचे वो मकान कितना ही वसी हो,
सही
जैसे फैजान मदीना का सहन है
बहुत बड़ा
है, तो अब इसमें अगर कोई बिल्कुल आखिरी सफ में पढ़ रहा है तो भी बहरहाल आगे कितनी ही 15-20 सफे ही आगे क्यों ना हो बगैर सुतरे के कोई शख्स जो है वो नहीं गुजर सकता।
आपने मिसाल दी फैजान मदीना की, इसी तरह बड़ी बड़ी मस्जिदें कराची में भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, बाद शायद किसी को समझने में ये वो मिस्टेक हो जाती है या कुछ और मामला, मस्जिद कबीर के हवाले से कुतुब में ये मसला लिखा हुआ कि मस्जिद कबीर ऐसी मस्जिद उसके अगर तीन सफ़े छोड़कर कोई गुजरना चाहता है तो बगैर सुतरे के भी गुजर जाता है, तो ये कौन सी मस्जिदें मस्जिद कबीर कहलाती?
फ़ी ज़माना अगर हम मस्जिद कबीर देखें तो वो मस्जिद हराम शरीफ और मस्जिद नबवी शरीफ है, ये मस्जिद कबीर के हुक्म के अंदर हैं कि इनमें अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है तो अब आप उसके सामने से तीन सफ के बाद से गुजर सकते हैं बगैर सुतरे के भी, सुतरे के साथ तो गुजरा ही जा सकता है। बहरहाल ये तो था गुजरने का हुक्म, इनका सवाल ये था कि अगर कोई गुजर गया तो नमाजी की नमाज का क्या हुक्म होगा? देखिए, गुजरने वाले के लिए बगैर सुतरे के गुजरना जायज नहीं, हदीस में फरमाया कि अगर वो शख्स ये जानता कि इसका कितना बड़ा जो है वो अजाब या गुनाह है तो वो 40 साल भी जो है वो खड़ा रहना गवारा करता मगर नमाजी के आगे से ना गुजरता।
अल्लाह,
तो लेकिन इसकी वजह से नमाजी की नमाज नहीं टूटेगी,
यानी झगड़ा करने की जरूरत नहीं, बाद में झगड़ा शुरू कर
नमाज आपकी हो जाएगी। अगर नमाजी ने किसी ऐसी जगह नमाज शुरू कर दी जो पता है गुजर गए या पता है भाई लोग यहाँ से गुजरेंगे और ये किसी चीज़ की आड़ लेकर भी नहीं पढ़ रहा कि भाई सुतून के सामने नमाज पढ़ ले या जो है वो किसी दीवार के सामने जो है वो नमाज पढ़ ले, तो अब ऐसी सूरत में नमाजी गुनाहगार होगा ये शख्स। जब इसे दिख रहा है जैसे जुमे का दिन है, पता है कि भाई ये वो लोग सारे इधर से गुजर रहे हैं, अब वहां पर वो सुन्नतें पढ़ने खड़ा हो गया।
सही।
इसी तरीके से कई दफा होता है कि जो लोग बाद में नमाज पढ़ने मस्जिद में आ रहे हैं, अब नमाजी निकल रहे हैं, वो आए हुए और उन साहब ने जो है वो मस्जिद के दरवाजे के करीब या ऐसी जगह से जहां से सारे लोगों ने गुजरना है, वो वहां पर बगैर ये देखे कि आगे कोई सुतून या सुतरा कोई चीज है, वो वहां पर तकबीर कह के नमाज शुरू कर देते हैं। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपको दिख रहा है कि लोग जो है वो यहाँ से गुजरेंगे या नमाज खत्म हो गई है आमतौर पर, अब नमाजी जो है वो बाहर निकलेंगे, तो फिर आपको किसी न किसी दीवार की या सुतून की आड़ लेकर ही नमाज अदा करनी चाहिए।
बस क्या करें, ये कलमिया है, ऐसे लोगों को समझाना, मैं कहता हूँ इनको शायद समझ तब आए, इनके घर के बाहर कोई ना गाड़ी खड़ी करते हैं और इनको भी निकलना हो उसी टाइम, और गाड़ी इनकी अंदर हो गेट के और वो निकालनी हो इनको बाहर, तो उस वक्त ये करें नहीं नाजरीन, ना ये सब किसी को हम दावत दे रहे, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसे वाक़ हो जाए तो उस वक्त तबीयत क्या ख्याल है कफील साहब, कि उस वक्त गुस्सा कितना होगा तबीयत में क्या, कि बस ये मिले सही। अच्छा, बाज लोग ना ऐसे मौके पे गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाते हैं
जी,
यानी किसी को पंचर कर देंगे, हवा निकाल देंगे, या बात सुना है कि ऐसी कुछ ऐसी चाबी मार देंगे, कुछ मारेंगे कि उसकी गाड़ी को नुकसान भी पहुंचाएंगे। बिल्कुल ये गलत काम है, ऐसे अगर एक ने गलती की है तो आपको ये हकासी नहीं कि आप इतने बड़े उसके माल के अंदर ये ज्यादती करें, और ये ठीक नहीं है। हम उसको भी कहेंगे वो शरण, उसका भी ये अमल ठीक नहीं, उसने आपको तकलीफ में मुब्तला किया। लेकिन यही सूरत हाल मसाजिद के अंदर भी तकरीबन नमाज पढ़ने वाले या लेट से आने वाले वो नहीं देखेंगे कि दुआए सानी हो रही है, अब एकदम लोगों ने उठना है दुआ के बाद, या दुआए अव्वल भी है तो उसके बाद भी एक लोग उठते हैं पीछे जाते हैं। बाजू का उजर है कफीर साहब, जमात से दो रकते रहेगी किसी की, अब हम नमाजियों को कहेंगे कि इनको मौका दें तसल्ली से पढ़ लें,
अपनी नमाज जो है वो मुकम्मल
कर लें। लेकिन जब ये हो चुका, अब इन्होंने यहाँ पढ़नी, जो कबलिया सुन्नतें पहले वाली रहती थी वो भी अब पढ़नी, अच्छा कुछ मजीद आगे पढ़ते रहते हैं मगरिब में जैसे नवाफिल पढ़े या कुछ और, तो वो ऐसी जगह पर भी वो कोई आगे पीछे अपने आप को हटाने के लिए रवादार नहीं होते कि लोगों को तकलीफ मेरी वजह से तकलीफ ना पहुंचे या मेरी वजह से गुनाहगार ना हो रहे हो कि आगे से वो गुजर रहे हैं, तो ऐसे हमें मौके नहीं देने चाहिए, इन चीजों का ख्याल बहरहाल हमें रखना चाहिए। जी मजीद सवाल
मुफ्ती साहब की बारगाह में, कुछ लोग सुबह सवेरे किसी इमेज पर सलाम लिखकर और उसमें नसीहत आमोज भरे कलमात अपने दोस्त अहबाब को साइन करते हैं, तो उस पर जो सलाम लिखा हुआ होता है जैसे कि इस तस्वीर में, तो इस सलाम का जवाब देना शरान जरूरी है या नहीं, इस हवाले से रहनुमाई फरमाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा।
क्या लिखा है, इस तरह की पोस्टें चलाते रहते हैं, दोबारा दिखाएं पोस्ट क्या है। अच्छा जी, इस्लाम वालेकुम, ठीक है, कई दुरुस्तियां इसमें हमें करनी पड़ेंगी, पहले इस्लाम है फिर वालेकुम, शायद इसको पढ़ने में ये बोलेंगे इस्लाम वालेकुम या अस्सलाम वालेकुम, जो भी इसको पढ़ ले, तो पहला यही ठीक नहीं लिखा हुआ
जी, अस्सलाम वालेकुम लिखना चाहिए,
वाव नहीं है
ये, तो वाव भी नहीं है, और दूसरा जो इस्लाम और अस्सलाम दोनों में फर्क है। इस्लाम जैसे मजहब इस्लाम ये है, और अस्सलाम का मतलब जो है वो सलामती है, तो लिहाजा ये दोनों जुमले लफ्ज ही अलग है, अस्सलाम अलग लफ्ज है और इस्लाम जो है वो एक अलग लफ्ज है, तो बहरहाल ये तो ऐसा सलाम तो कोई आपको अगर मुलाकात के लिए भी आए और इस इन अल्फाज से अदा करे तो उसका जवाब देना भी वाजिब नहीं होगा। चे जाए कि इस पोस्ट पे किसी ने भेजा सलाम के जवाब देने का हुक्म ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि सलाम जो है वो हम जिसे जानते हों या ना जानते हों उसे सलाम करें, और अगर कोई हमें सलाम करे तो हमें उसका जवाब देना चाहिए, इससे इनकार नहीं है। हाँ अलबत्ता इस सलाम का जवाब देना वाजिब है कि ना देने की सूरत में आप गुनाहगार होंगे, वो सलाम है कि जो शख्स आपसे मुलाकात की गर्ज से आया है और अब वो आपको सलाम करता है तो उस सलाम का जवाब देना वाजिब है। इसी तरह अगर तहरीर के अंदर मैसेज के ऊपर, व्हाट्सएप पर, ईमेल के ऊपर, ख़त पर किसी ने सलाम लिखा, तो अब अगर उसका ये सलाम आपसे मुलाकात आपकी खैरियत मालूम करने के लिए है तो इस एतबार से तो उस सलाम का जवाब देना वाजिब होगा, चाहे आप तहरीरी तौर पर ही जवाब दे दें चाहे ज़बानी तौर पर आप जो है वो जवाब दे दें। लेकिन जो आम तौर पर इस तरह पोस्टों में या किसी के साथ भी कोई चीज़ शेयर करते हुए या हत्ता के मसला पूछते हुए या किसी से मशवरा मांगने के लिए जो है वो आपने कोई
सलाम किया
किया और उसमें आपने शुरू में सलाम किया, तो ये चूंकि मुलाकात की गर्ज से जो है वो सलाम नहीं है, तो इस सलाम का जवाब देना भी वाजिब नहीं है।
अच्छा, व्हाट्सएप पे वैसे ही मुलाकात नहीं हो रही, यहाँ पे मुलाकात से मुराद कोई खैर खैरियत?
खैर खैरियत की खैर खैरियत मालूम करने के लिए अगर आपने व्हाट्सएप किया कि मैं जैसे आपको करूँ कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसे हैं मुफ्ती साहब, खैरियत से हैं, आपकी सुना तबीयत ठीक नहीं थी, तो अगर ये इस तरह का एक अंदाज है कि अब ये मतलब कोई अपने काम से मैं नहीं कर रहा कि मैं बोलूँ कि जनाब जो है वो आपने सिलसिले में आना था, क्या हुआ?
लेकिन ये सारी यही कहते हैं ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, मुसब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, अच्छा वो मसला ये याद आया था, आज मैं नमाज़ पढ़ने गया था तो वहाँ यूं था और फिर वो काफ़ी सारे,
वो जो असल में खैरियत है ना वो तो एक रस्मी तौर पर एक जुमला है, वहाँ पर खैरियत मालूम करना मकसूद नहीं,
मकसूद नहीं,
मकसूद वहाँ पर मसला पूछना है, या जैसे यही कि मैं आपको कहूँ कि भाई वो सिलसिले के लिए जो है वो आना था तो आप अब तक आए नहीं, अब उसमें शुरू में अगरचे मैं ये कहूँ कि अस्सलामु अलैकुम कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, अब अगला ये जुमला मैंने, लेकिन वही है कि मकसद ये है कि आपके ना आने की वजह जानना चाह रहा हूँ मैं,
ठीक है,
तो ये बात है, तो असल वहाँ पर जब मकसूद जो है वो खैरियत मालूम करना नहीं है तो उस सलाम का जवाब देना वाजिब नहीं,
वाजिब नहीं है, ठीक है, कहाँ वाजिब है कहाँ वाजिब नहीं, ये भी एक पूरी डिटेल से बहरहाल जवाब तो इरशाद फरमाया है और इसको हमें याद भी रखना चाहिए। हाल बता, अगर ज़ाहिर है किसी ने सलाम किया है और हम कोई ऐसे काम में या कुछ ऐसे नहीं है तो जवाब तो देना चाहिए?
बिल्कुल जवाब देना चाहिए, अलबत्ता देखें जो इस तरह के पोस्टों के सलाम होते हैं इसमें कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि आप मुझे जवाब
नहीं, इसमें नहीं, जैसे किसी काम के लिए फोन करके या व्हाट्सएप करते हैं, अस्सलाम वालेकुम
मसले के लिए भी कोई हमें अगर मैसेज जो है वो करता है तो अब हम भी अखलाकन भी उसको अगर उस सलाम का जवाब देना वाजिब नहीं है कि वो तो मसला पूछने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जवाब यूं ही दिया जाता है कि पहले उनके सलाम का जवाब दिया जाता है फिर जो है वो उनको मसला जो है वो बताया जाता है, उनके ऊपर साइलिन जो दारुल इफ्ता में फोन करते हैं तो उनके साथ भी यही रवैया इख्तियार किया जाता है और करना भी यही चाहिए कि बहरहाल सलाम आम करने से मोहब्बतें जो है वो बढ़ती हैं, लिहाजा हमें सलाम को आपस में आम करना चाहिए,
करना चाहिए, और जहाँ लिखें तो वहाँ दुरुस्त लिखें। ये मैंने इस दौरान ये लिखा है, अगर हमारे कैमरा मैन इसको थोड़ा जूम करके दिखा पाएं, आपने जो लिखा जो आया हमारे पास है और वो ये देखें इस तरह आया था, इस्लाम वाओ अलैकुम, इस्लाम वाओ अलैकुम, ये तो ठीक नहीं, और ये दुरुस्त ऊपर जो ना अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अगरचे आप आगे वाला ना भी लिखना चाहें लेकिन कम अज कम जो अस्सलामु अलैकुम है तो वो ये वाला दुरुस्त है और इस तरह। अच्छा, सिर्फ सलाम लिखें तो ये भी ठीक है, अगर किसी ने मैसेज किया या कुछ किया सलाम लिखा तो ये भी ठीक है, आप रोमन में भी अगर इसको लिखते हैं तो ये साथ रोमन में भी लिखा हुआ है कि सलाम SALAM या SAL और AM सलाम, तो यूं भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये जो सबसे नीचे लिखा हुआ है इस्लाम वाओ अलैकुम ये गलत है, ये दुरुस्त नहीं है। तो नाज़रीन किराम, ये चीज़ें भी जब हम लिखते हैं तो इसको भी समझना चाहिए और दुरुस्त हम लिखकर सामने वाले के पास है बहरहाल इसको हमें भेजना चाहिए। जी बढ़ते हैं मज़ीद सवाल।
मेरा सवाल ये है कि नमाजों का जो फिदिया देते हैं तो उसका तरीका बयान कर दें बराए कराम।
नमाजों का जो फिदिया दिया जाता है उसका कोई तरीका?
नमाजों का फिदिया देना किसको है वो तो कोई किसी भी मुस्तहिक के ज़कात को आप दे सकते हैं, अलबत्ता इस बात का ख्याल की करना ज़रूरी है कि आप जिसका फिदिया दे रहे हैं उसकी औलाद को या उसके ऊपर जो माँ बाप हैं उन्हें नहीं दे सकते, यानी अगर आप अपने वालिद मोहतरम का जो है वो फ़िदिया दे रहे हैं तो आप अपने किसी भाई को नहीं दे सकते अगरचे वो मुस्तहिक के ज़कात भी हो। अच्छा, फ़िदिये की कैलकुलेशन अगर तो आपको पता है कि भाई इतनी वालिद साहब की नमाज़ें आखिरी उम्र में उन्होंने 5 साल नमाज़ें नहीं पढ़ी बाकी पूरी ज़िंदगी पढ़ते रहे तो 5 साल का आपने देना है तो आप 5 साल की नमाज़ों को कैलकुलेट कर लीजिए। नमाज़ें किस तरह कैलकुलेट की जाएंगी? रोज़ाना की 6 नमाज़ें कैलकुलेट की जाती हैं, 5 फ़र्ज़ और 1 वितर वाजिब। हर नमाज का 1 सदक़ा फितर होता है यानी तकरीबन 2 किलो गंदम या उसका आटा या उसकी कीमत, तो 6 नमाजों का मतलब है कि जो है वो 12 किलो जो है वो गंदम या उसका आटा या उसकी कीमत है। अब इसी को आप मल्टीप्लाई कर लें, ज़रब दे लें आप जो है वो 365 दिनों के साथ तो साल का निकल आएगा, फिर उस 365 को आप ज़रब दे दें 5 साल के साथ तो 5 सालों का निकल आएगा। यूं ही अगर आपने जो है वो रोज़ों का करना है तो 1 रोज़े का जो फ़िदिया होता है वो 1 सदक़ा फितर होता है, तो हर साल के आप 30 रोज़े रख लें तो यूं जो है वो 30 صدقہ فطر اس کے جو ہے وہ نکل آئیں گے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے فدیے کا کہ آپ فدیے کی کیلکولیشن کریں۔ اب آپ نے فدیے کی کیلکولیشن کر لی کہ بھئی کتنے سالوں کی ان کی نماز ہے، اچھا معلوم نہیں ہے آپ کو کتنے سالوں کی چھوڑی اور آپ چاہتے ہیں پوری زندگی ان کی نمازوں کا فدیہ نکال لیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ والد صاحب کی جو ہے وہ عمر پیدائش اور وفات ٹوٹل اس کے سال جتنے بنتے ہیں ان میں سے والد صاحب ہیں یا بھائی یہ جو بھی ہے مرحوم اگر مرد ہے تو 12 سال نابالغی کے مائنس کر کے بقیہ جتنے سال بنتے ہیں ان کو جو ہے وہ آپ اسی طرح ضرب دے لیں، اور اگر مرحومہ کی جانب سے نکال رہے ہیں کسی عورت کی جانب سے تو 9 سال جو ہے وہ ان کے نابالغی کے مائنس کر کے جو بقیہ سال بنتے ہیں اس کو جو ہے وہ آپ کیلکولیٹ جو ہے وہ کر لیں، تو یوں جو ہے وہ نکلے گا۔
مزید اس آسانی کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات منالیہ کی کتاب ہے نماز کے احکام اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی اسلامی بہنوں کی نماز، تو اس میں ایک رسالہ ہے قضاء نمازوں کا طریقہ، تو اس رسالے میں بھی بہت اچھے انداز سے اور پوری تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ اس کے سہل اور آسان طریقے بھی ہیں۔ ظاہر ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ اتنی تو گنجائش ہی نہیں ہے، تو اب اس کا کیا شرعی طریقہ ہو سکتا ہے، کتنے مال سے کیا چیز ادا ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے آپ اس رسالے کا ضرور وہ مطالعہ کریں۔
یہاں پہ یہ کہ کس سے ادا ہو سکتی ہے یہ بھی بعض لوگ کے ذہن میں آتا ہے، بعض پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی جو امی ابو کا مال ہے اس میں سے پہلے فدیہ ادا کریں ہم؟
جی ہاں بالکل۔
تو یاد رہے کہ اگر انہوں نے وصیت کی ہے کہ جناب میرے مال میں سے آپ فدیہ ادا کریں، تو 1/3 ان کے مال کا تہائی حصے میں سے 33% میں سے تو آپ ان کی یہ وصیت پورا کرنا آپ پر لازم ہے۔ اگر انہوں نے وصیت نہیں کی تو پھر بات آ جائے گی کہ اگر تمام ورثہ عاقل بالغ ہیں اور وہ اجازت دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے پہلے آپ ترکے میں سے جو ہے نا والد صاحب کا فدیہ ادا کر دیں تو آپ ادا کر سکتے ہیں، اگر ورثہ اجازت نہیں دیتے تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ مال ترکہ میں سے ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں کوئی وارث اپنے پاس سے ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو کیلکولیشن نکلوانی ہو تو آپ ہمارے دارالافتاء اہل سنت کی کسی برانچ پر بھی آ کر عمر وغیرہ والد کی بتا کر پوری وہ کیلکولیشن بھی ہم سے حاصل کر سکتے ہیں، پلس دعوت اسلامی کے اندر جو ہے وہ جو مالیات یا ڈونیشن کے ذمہ داران جو جمع کرتے ہیں وہ فدیے کی رقم جمع کرتے ہیں تاکہ اس کی شرعی طریقہ کار کے مطابق ادائیگی بھی کر سکیں، تو آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ان کو آپ تمام تفصیل بتائیں گے تو وہ اس کے مطابق آپ کو آگاہ کر دیں گے کہ جناب کتنی رقم بن رہی ہے، کتنی آپ دیں گے تو کس طریقے سے اس کی ادائیگی کی صورت درست طریقے کار کے مطابق ہو سکے۔
جی ناظرین اکرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ۔
ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔